एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसने सिर्फ अमेरिकी साहित्य पर बल्कि ये कह सकते हैं कि समाज को देखने के हमारे नजरिए पर भी काफी गहरी छाप छोड़ी है। मैं हूँ आपका पहला मेजबान।
और मैं हूँ आपकी दूसरी मेजबान। आज हम बात कर रहे हैं जोन डिडियन की बहुत ही मशहूर किताब स्लाउचिंग टुवर्ड्स बेथलेहम पर। ये किताब 1960 के दशक के अमेरिका, जो काफी उथल पुथल वाला दौर था, उसका एक बहुत ही पहना और हाँ कई बार बेचैन कर देने वाला चित्रण करती है।
बिल्कुल, और सोचने वाली बात यह है कि ये किताब आज भी इतनी जरूरी क्यों लगती है। शायद इसलिए है ना, क्योंकि डिडियन ने जिन दरारों को, जिस बिखराव को 60 के दशक के अमेरिका में महसूस किया था, मतलब समाज का टूटना, पहचान का संकट, वो अर्थ की तलाश जो कहीं खो गई थी,
हाँ,
वो चीजें आज भी शायद किसी और शक्ल में हमें अपने आसपास दिखती हैं।
एकदम, ये सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है, ये कहीं ना कहीं आज का आईना भी है।
तो चलिए पहले इस आईने को बनाने वाली जो लेखिका हैं, जोन डिडियन, उनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। 1934 में कैलिफोर्निया में उनका जन्म हुआ और 2021 में उनका निधन हुआ। वो एक बेहद प्रभावशाली निबंधकार और पत्रकार थीं। उन्हें न्यू जर्नलिज्म की, मतलब उस पत्रकारिता की जिसमें तथ्यों के साथ कहानी कहने का साहित्यिक अंदाज होता है, उसकी एक प्रमुख आवाज़ माना जाता है।
हाँ, और उनकी खासियत थी उनकी एकदम साफ, क्रिस्टल क्लियर नज़र। कभी कभी तो निर्मम सी लगती है। वो चीज़ों को बिना किसी लाग लपेट के देखती थी, अक्सर थोड़ी दूरी बनाकर।
और चूंकि वो खुद पांचवी पीढ़ी की कैलिफोर्नियाई थी, तो उन्हें अमेरिकी पश्चिम के जो मिथक हैं और जो उसकी सच्चाई है, उसकी बहुत गहरी समझ थी।
और उन्होंने वोग मैगजीन में भी काम किया था ना।
हाँ हाँ बिल्कुल, उस अनुभव ने उन्हें संस्कृति की नब्ज पकड़ना सिखाया कि ट्रेंड्स कैसे बनते बिगड़ते हैं। और मुझे लगता है उनकी अपनी जो एक निजी संवेदनशीलता थी, शायद एक तरह की अंदरूनी बेचैनी या विस्थापन का एहसास, उसने उन्हें सामाजिक बिखराव का जो मनोवैज्ञानिक असर होता है उसे समझने में बहुत मदद की। मतलब वो सिर्फ बाहर से रिपोर्ट नहीं कर रही थीं, वो उस बेचैनी को शायद खुद भी महसूस कर रही थीं।
और यही बात उनकी लेखनी को इतनी ताकत देती है, इतनी गहराई देती है।
तो अब आते हैं किताब पर, स्लाउचिंग टुवर्ड्स बेथलेहम। ये असल में निबंधों का एक संग्रह है जो उन्होंने 1961 से 1967 के बीच लिखे थे।
और इसका शीर्षक वो W.B. यीट्स की एक बहुत मशहूर कविता है, द सेकंड कमिंग, वहां से लिया गया है। वो कविता भी अराजकता और व्यवस्था के टूटने की बात करती है।
बिल्कुल, और यही इस किताब का केंद्रीय स्वर भी है ना। डिडियन का मूल तर्क यही था कि समाज का जो केंद्र था, मतलब वो नैतिक और सामाजिक ढांचा जो लोगों को एक साथ बांधता है, वो कमजोर पड़ रहा था। उनकी वो मशहूर लाइन है, द सेंटर वॉज नॉट होल्डिंग।
हाँ, केंद्र टिक नहीं पा रहा था।
जैसे परिवार, समुदाय, धर्म, यहाँ तक कि भाषा, हमारी कहानियाँ, वो सब चीज़ें जो हमें एक पहचान देती हैं, एक साझा अर्थ देती हैं, वो अपनी पकड़ खो रही थी।
और इसका नतीजा क्या हो रहा था? डिडियन के हिसाब से नतीजा था बिखराव, अकेलापन, एक तरह की दिशाहीनता और नैतिक शून्य। लोग पुराने मूल्यों से तो कट गए थे, लेकिन नए मूल्य अभी बने नहीं थे या कम से कम स्पष्ट नहीं थे।
और कैलिफोर्निया, जिसे डिडियन एक तरह से भविष्य के अमेरिका की प्रयोगशाला की तरह देखती थीं, वहां ये बिखराव सबसे ज्यादा साफ नजर आ रहा था।
हाँ, वो दिखाती हैं कि कैसे आजादी के नाम पर लोग असल में गहरे अलगाव का शिकार हो रहे थे, वो जुड़ाव की कमी महसूस कर रहे थे।
चलिए कुछ खास निबंधों के जरिए इस बिखराव को थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। किताब का जो शीर्षक निबंध है, स्लाउचिंग टुवर्ड्स बेथलेहम, वो हमें ले जाता है 1967 के सैन फ्रांसिस्को, हाइट एशबरी इलाका, जो हिप्पी आंदोलन का गढ़ माना जाता था।
लेकिन डिडियन वहां कोई फूलों और शांति वाली रोमानी तस्वीर नहीं खींचती।
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हमें दिखाती हैं खोए हुए, नशे में डूबे, एकदम दिशाहीन युवा। उनका वर्णन तो वाकई झकझोर देता है, जैसे वो 5 साल की बच्ची जो एसिड पर है क्योंकि उसकी माँ को लगता है कि उसके लिए अच्छा है।
हाँ, या वो किशोर जो बस एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, बिना किसी जिम्मेदारी के, बिना भविष्य की किसी सोच के। डिडियन इसे आजादी नहीं मानती।
नहीं, वो इसे सामाजिक और पारिवारिक ढांचे के टूटने से जो अराजकता पैदा होती है उसके रूप में देखती हैं। ये वाकई एक बेचैन करने वाला चित्रण है कि जब केंद्र टूटता है तो क्या होता है।
और ये सिर्फ हिप्पियों की कहानी तक सीमित नहीं है। एक और निबंध है, सम ड्रीमर्स ऑफ द गोल्डन ड्रीम। ये कहानी है एक आम गृहिणी ल्यूसिल मिलर की, जिस पर अपने पति की हत्या का आरोप लगता है।
अच्छा,
डिडियन इस केस का इस्तेमाल करती हैं कैलिफोर्निया ड्रीम, वो जो सुनहरा सपना है कि वहां जाकर सबकी जिंदगी एकदम बदल जाती है, बेहतर हो जाती है, उसके खोखलेपन को दिखाने के लिए।
मतलब जब सपने और हकीकत के बीच का फासला बहुत बढ़ जाता है।
हाँ, तो वो कैसे निराशा और यहाँ तक कि त्रासदी को जन्म दे सकता है। यहाँ वो सपनों और असलियत के बीच की खाई साफ नजर आती है।
लेकिन डिडियन सिर्फ समाज के पतन की बात नहीं करती, वो व्यक्तिगत स्तर पर भी देखती है ना। किताब का जो दूसरा हिस्सा है पर्सनल्स, उसमें उनका एक निबंध है ऑन सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी आत्मसम्मान पर।
हाँ, और वो आज भी मुझे लगता है बहुत ज्यादा प्रासंगिक है।
हाँ, वाकई बहुत शक्तिशाली निबंध है वो। डिडियन कहती हैं कि जो सच्चा आत्मसम्मान है वो दूसरों की तारीफ या उनकी मान्यता पर निर्भर नहीं करता, ये कोई बाहरी चीज नहीं है।
तो फिर क्या है?
ये एक अंदरूनी अनुशासन है, खुद के साथ किया गया एक तरह का समझौता, अपने उसूलों पर टिके रहने की क्षमता, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना। डिडियन के लिए ये शायद वो व्यक्तिगत केंद्र बनाने का तरीका है जब बाहरी सामाजिक केंद्र हिल रहा हो, कमजोर पड़ रहा हो।
ये कितना दिलचस्प है ना। एक तरफ वो समाज के बिखराव का इतना तीखा, इतना साफ विश्लेषण कर रही हैं, और दूसरी तरफ वो व्यक्ति के अंदरूनी मजबूती की, उसके आत्मसम्मान की बात कर रही हैं।
हाँ, जैसे वो कह रही हूँ कि देखो, जब बाहर सब कुछ डामाडोल हो तो अपने अंदर एक लंगर डालना बहुत जरूरी है।
और ये जो आत्मसम्मान है, ये सिर्फ अच्छा महसूस करने या सेल्फ एस्टीम से अलग है?
हाँ बिल्कुल, ये उससे कई ज्यादा गहरा है, ज्यादा बुनियादी। ये अपनी कमजोरियों और अपनी ताकतों दोनों को जानने और उन्हें स्वीकार करने से आता है। फिर चाहे दुनिया आपको पहचाने या न पहचाने, आपको अपना मूल्य पता होता है।
और एक और पहलू जो डिडियन छूती हैं, वो है मोह भंग का। उनका एक निबंध है गुड बाय टू ऑल दैट। उसमें वो न्यूयॉर्क शहर के साथ अपने शुरुआती जुनून और फिर धीरे धीरे उससे मोह भंग होने की कहानी बताती हैं।
अच्छा, ये तो काफी व्यक्तिगत लगता है।
है तो व्यक्तिगत, लेकिन ये सिर्फ एक शहर को छोड़ने की कहानी नहीं है। ये शायद युवावस्था के जो भ्रम होते हैं उनको छोड़कर एक ज्यादा जटिल और शायद थोड़ी कम आकर्षक सच्चाई को स्वीकार करने का भी प्रतीक है।
तो अगर हम इन सब धागों को एक साथ पिरोकर देखें तो डिडियन की किताब से कुछ मुख्य विषय या संदेश उभर कर आते हैं। पहला और सबसे साफ है केंद्र का पतन और सामाजिक विघटन। मतलब जब समाज को जोड़ने वाली संस्थाएं, मान्यताएं कमजोर होती हैं तो व्यक्ति अकेला और दिशाहीन महसूस कर सकता है।
और क्या हम आज जैसे भारत में बदलते पारिवारिक ढांचों को देखें या बढ़ते शहरी अकेलेपन को देखें, तो क्या इसमें उसकी कोई झलक नजर आती है? ये सोचने वाली बात है।
बिल्कुल। दूसरा विषय है पहचान का विखंडन। जब सामाजिक ताना बाना बिखरता है तो व्यक्ति की अपनी पहचान भी सवालों के घेरे में आ जाती है। हम कौन हैं? हमारा मकसद क्या है?
और आज के जमाने में सोशल मीडिया के साथ, जहां हमारी पहचान के इतने सारे अलग अलग ऑनलाइन चेहरे हैं, ये सवाल शायद और भी पेचीदा हो गया है। क्यों?
हाँ, बहुत ज्यादा। तीसरा, मिथक और वास्तविकता के बीच का तनाव, खासकर जगहों को लेकर। डिडियन ने कैलिफोर्निया ड्रीम का पर्दाफाश किया। क्या हमारे अपने शहरों या अवसरों को लेकर भी ऐसे मिथक हैं जो हमें असलियत देखने से रोकते हैं, जैसे दिल्ली ड्रीम या बॉम्बे ड्रीम या बैंगलोर बूम?
हाँ, क्या उनमें भी सपनों और सच्चाई का एक फासला है? ये मुमकिन है?
चौथा, जिसे डिडियन बड़ी बारीकी से पकड़ती हैं, वो है विद्रोह का बाजारीकरण।
अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ?
मतलब कैसे व्यवस्था के खिलाफ दिखने वाले आंदोलन या जीवन शैली भी आखिरकार बाजार का हिस्सा बन जाते हैं, एक बिकाऊ चीज बन जाते हैं और अपनी असली धार खो देते हैं, जैसे हिपी स्टाइल का फैशन बन जाना।
हाँ, समझ गया। क्या आज के दौर के एक्टिविज्म या जो ऑनलाइन ट्रेंड्स चलते हैं उनमें भी ऐसा कुछ होता?
ये सवाल तो हमेशा बना रहता है ना। और इन सब के बीच पांचवा और शायद सबसे स्थायी संदेश है व्यक्तिगत नैतिकता और आत्मसम्मान का महत्व। जब बाहरी दिशा निर्देश धुंधले पड़ जाएं, तो अपने अंदर की आवाज सुनना, अपने उसूलों पर टिके रहना कितना जरूरी हो जाता है।
डिडियन की भाषा वाकई बहुत सटीक और यादगार है। उनके कुछ विचारों का सार तो दिमाग में घूमता रहता है, जैसे उनका वो वाक्य कि केंद्र टिक नहीं पा रहा था, चीजें बिखर रही थीं। ये सिर्फ 60 के दशक का हाल नहीं लगता, ये किसी भी ऐसे दौर की कहानी हो सकती है जहां बड़े बदलाव आ रहे हों।
हाँ, या उनका वो मशहूर विचार जो असल में उनकी बात की किताब का शीर्षक भी बना, लेकिन इस किताब की आत्मा से पूरी तरह जुड़ा है, हम जीने के लिए खुद को कहानियां सुनाते हैं।
हाँ, ये बहुत गहरा है।
ये बताता है कि जिंदगी में अर्थ भरने के लिए हमें व्यक्तिगत और सामूहिक कथाओं की, नैरेटिव्स की कितनी जरूरत होती है, और जब वो कथाएं टूटने लगती हैं तो इंसान कितना असुरक्षित, कितना खोया हुआ महसूस कर सकता है।
और स्वतंत्रता पर भी उनका नजरिया थोड़ा अलग है। वो कहती हैं कि सच्ची आज़ादी सिर्फ पाबंदियों की कमी नहीं है, बल्कि जुड़ाव की कमी भी आज़ादी के वादे को खोखला कर सकती है।
मतलब अलगाव में स्वतंत्रता नहीं है।
हाँ, उनका इशारा है कि असली स्वतंत्रता शायद समुदाय और रिश्तों में है, अकेलेपन में नहीं।
और आत्मसम्मान पर उनकी वो बात कि ये सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं, बल्कि एक निजी सुलह, एक ज्ञात तथ्य, हड्डी में एक कंपकंपी जैसा है। मतलब ये कोई सतही चीज नहीं, ये हमारे वजूद के, हमारे होने के एहसास से जुड़ा है।
ये विचार आज भी उतने ही ताकतवर लगते हैं।
हाँ,
बिल्कुल।
तो सवाल ये उठता है कि हम डिडियन के इन गहरे और कभी कभी असुविधाजनक विचारों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे देख सकते हैं या कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
हाँ, क्या कुछ तरीके हैं?
मुझे लगता है पहली चीज तो है मीडिया और संस्कृति को आलोचनात्मक नजर से देखना सीखना। डिडियन ने दिखाया कि कैसे भावनाओं और विद्रोह का भी बाजारीकरण हो सकता है। तो आज जब हम कोई विज्ञापन देखते हैं या सोशल मीडिया पर कोई ट्रेंड फॉलो करते हैं, तो शायद रुककर सोच सकते हैं इसके पीछे का असली मकसद क्या है। क्या ये वाकई कोई सार्थक बदलाव है या सिर्फ एक नया प्रोडक्ट बेचा जा रहा है।
ये एक अच्छा पॉइंट है। दूसरा, ये हमें सामाजिक बदलावों को समझने में मदद कर सकता है। आज जब हम समाज में इतना ध्रुवीकरण देखते हैं या इतनी तेजी से बदलते हुए मूल्य देखते हैं, तो डिडियन का नज़रिया हमें याद दिलाता है कि इन बदलावों का मानवीय चेहरा भी देखें। लोगों पर, खासकर उन पर जो हाशिए पर हैं, इसका क्या असर हो रहा है? मतलब सतही नारों से आगे जाकर सोचने की ज़रूरत है।
एकदम सही। और तीसरा, जो शायद सबसे व्यक्तिगत है, वो है आंतरिक मजबूती या आत्मसम्मान विकसित करना। आज की दुनिया में बाहरी मान्यता का बहुत शोर है, लाइक्स, फॉलोअर्स, सफलता के जो बाहरी पैमाने हैं।
हाँ, उसका दबाव तो बहुत है।
अपनी मूल्यों पर टिके रहने से, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने से, शायद डिडियन की तरह एक नोटबुक रखना जिसमें हम सिर्फ घटनाएं नहीं बल्कि अपनी भावनाओं और विचारों को भी लिखें, वो इस सफर में मददगार हो सकता है।
ये वाकई कुछ बहुत अच्छे नुक्ते हैं। तो अंत में अगर हम सोचें कि इस किताब से हमारे लिए मुख्य सबक क्या है, मेरे लिए शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि बदलाव जरूरी हो सकता है, लेकिन हमें उसकी मानवीय कीमत को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। डिडियन की सहानुभूति हमेशा उन लोगों के साथ थी जो उस उथल पुथल के बीच अपना रास्ता ढूंढ रहे थे, भले ही वो अक्सर असफल हो रहे हों।
और मेरे लिए डिडियन की जो ईमानदारी है, उनकी चीज़ों को बिना किसी लाग लपेट के जस का तस देखने की जो क्षमता है, वो सबसे ज़्यादा असरदार है। वो किसी भ्रम में नहीं रहती और न हमें रहने देती हैं। और उनका आत्मसम्मान पर जो जोर है, खासकर आज के समय में जब बाहरी मान्यताएं इतनी हावी हैं, वो बहुत ज़रूरी लगता है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि जब दुनिया तेज़ी से बदल रही हो, तो अपने भीतर एक ठोस ज़मीन तलाशना कितना अहम है।
ये वाकई एक ऐसी किताब है जो आपको सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, शायद थोड़ी बेचैन भी करती है, लेकिन अंत में कुछ गहरे सवालों के साथ छोड़ जाती हैं।
और शायद यही आज के लिए सबसे बड़ा सवाल है जिस पर हम श्रोताओं को सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। डिडियन ने व्यक्ति के अंदरूनी केंद्र पर, आत्मसम्मान पर जोर दिया। आज जब हमारी पहचान, हमारे विचार, यहाँ तक कि हमारी भावनाएं भी लगातार बाहरी ताकतों, एल्गोरिथम्स, सोशल मीडिया ट्रेंड्स, बाजार से प्रभावित हो रही हैं, तो क्या अपना वो अंदरूनी केंद्र बनाना, वो आत्मसम्मान हासिल करना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है या शायद कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।